તારીખ 30/1/1998, ડાયરીના બોલ નંબર 144 અને 183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 165.
આત્મભાવના છે, આત્મકલ્યાણની ભાવના છે, જે મુમુક્ષુકો શરૂઆત મેં હોતી હૈ, પ્રારંભ મેં કિસી ભી મુમુક્ષુ કા ઉસ માર્ગ મેં પ્રવેશ હોતા હૈ, ઇસ લાઇન મેં તો અપને આત્મકલ્યાણ કી ભાવના સે હી પ્રવેશ હોતા હૈ. મુજે મેરા આત્મકલ્યાણ કરના ચાહીએ ઓર કરના હૈ. તો આત્મકલ્યાણ કી ભાવના વાલે કો શાંતિ બની રહેગી, વરના તો શાંતિ નહીં હોય. તો આત્મકલ્યાણ કી ભાવના ઉસમેં સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ કી ભાવના હૈ, ઓર જો મોક્ષ માર્ગ હૈ ઉસકા બીજ વહાં હૈ. આગે જો મોક્ષ માર્ગ હોને વાલા હૈ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક ધ્યાન, સમ્યક ચારિત્ર, ઉસકા બીજ ઉસ ભાવના મેં પડા હૈ. જિસકો આત્મકલ્યાણ કી ભાવના હોગી ઉસકો હી આગે જાકર કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપ મોક્ષ માર્ગ મિલ સકતા હૈ. દૂસરે કો જૈસે મોક્ષ માર્ગ કા મૂળ સમ્યક દર્શન હૈ, વૈસે મુમુક્ષુ જીવ મેં અંતર કી સચ્ચી આત્મકલ્યાણ કી ભાવના વાલો કો હી વેદ જ્ઞાન હો સકતા હૈ, દૂસરે કો વેદ જ્ઞાન નહીં હોતા હૈ. એ આખિર કા સ્ટેજ લે લિયા. બાકી આત્મકલ્યાણ કી ભાવના વાલે કો હી અપને પરિભ્રમણ કી ચિંતા હોતી હૈ. પરિભ્રમણ કી ચિંતા નહીં હોતી હૈ તો આત્મકલ્યાણ કી ભાવના નહીં હોય, ક્યોંકિ પહેલા સ્ટેજ વહી હૈ. પર જિસકી ભાવના હોતી હૈ ઉનકો હી ઉદાસીનતા આતી હૈ, ઉનકો હી પૂર્ણ શુદ્ધિ કા મોક્ષ કા લક્ષ્ય હોતા હૈ. પર ભાવના વાલે કોઈ યથાર્થ અવલોકન હોતા હૈ, ઉસી કોઈ પ્રયોજન પર દ્રષ્ટિ રહે સકતી હૈ. ઓર આગે જા કરકે વો ભાવના વાલા હી ભેદ જ્ઞાન મેં આ સકતા હૈ, દૂસરા કોઈ ભેદ જ્ઞાન મેં નહીં આ સકતા. એસે સભી સ્ટેજ કા પુરુષાર્થ હૈ વો ભાવના કે આધારિત હૈ. ભાવના વાલા હી સ્વરૂપ કો પહેચાન સકતા હૈ, પર ઉસકી એસી યોગ્યતા આતી હૈ, દૂસરે કો એસી યોગ્યતા નહીં આતી. भावना वाला कोई स्वरूप की पहचान होती है, और इसलिए भावना में तथारूप रस होने की परिणति उत्पन्न होती है, भावना से परिणति बनती है, भावना बिना परिणति नहीं बनती। उल्टी जो परिणति बन चुकी है हमारी, वो परिणति भावना के बल से पलट सकती है, इसके बिना नई परिणति नहीं होती, पुरानी तो चालू नहीं। सब मूल में आत्मकल्याण की जो भावना होनी चाहिए वही इसकी परिणति बनाएगी। भावना बार बार होने से इसकी परिणति बन जाएगी।
उपयोग रूप
भावना से बार बार उपयोग होगा, बार बार उपयोग होने से रस के कारण से परिणति बनेगी। तो परिणति का कारण रस है, क्या है परिणति का कारण? रस है। जिस प्रकार का रस तीव्र होता है उस प्रकार की परिणति बन जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने उदय में रस लेने की मतलब मना की है कि उदय में तुम रस मत लेना। उदय में तीव्र रस लेने से परिणति बन जाएगी, फिर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जितने रस से हमारी विपरीत परिणति बनी है, इससे अधिक रस जब हमारे भावना का होगा तभी तो ये परिणति पलटेगी, इसके पहले नहीं पलटेगी। तो जैसे कि हम पहले रस तो बहुत ले लिया है, संसार के कार्यों का जो जो उदय आया उसमें रस तो बहुत ले लिया है। अब मानो कि निवृत्ति में रस नहीं ले रहे हैं, ये हमारा काम तो नहीं होता। समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि अब तो हम रमले रस लेते नहीं, पहले तो व्यापार करते थे तो व्यापार का रस चढ़ जाता था, अब तो निवृत्त हो गया, कोई काम है नहीं। लेकिन हमारी इतनी भावना हुई कि वो परिणति पूरी पलट जाए, ऐसी भावना हुई क्या? अगर उतनी भावना नहीं हुई तो वो परिणति चालू है, भले हमारे उदय कार्य में उतना उपयोग या रस नहीं हो, लेकिन परिणति है वो प्रतिबंधक है, परिणति का अवरोध चालू रहता है। और बात समझ में नहीं आती कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समस्या रहेगी कि हम तो कोई रस लेते नहीं। व्यापार में भी क्या होता है कि जिसको जितना नुकसान जाता है उतना भरपाई नहीं होता है, वहां तक उसके पास मुड़ी पूंजी कहां से बनती है, कैपिटल कहां से बनेगी, बनती है क्या? को 5 लाख का नुकसान गया तो 5 लाख का कमाई होगी, वहां तक तो पूंजी दिखेगी नहीं। ऐसे जो हमारी उल्टी परिणति बनी है वो तो नुकसान हो चुका है, वो नुकसान वाइप ऑफ होने के बाद तो मुनाफा दिखेगा ना, इसके पहला मुनाफा कहाँ से दिखेगा? कमाई तो होती है, वो करते हैं, मानो के स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ रस लेते हैं, लेकिन उतना उतनी उतना मात्रा में नहीं है वो कि हमारी परिणति पलट जाए। उतनी मात्रा में नहीं। आत्मकल्याण की जरूरत लगे, जरूरत में से रुचि भावना वो पैदा होती है, कितनी जरूरत लगे उस पर उसकी तीव्रता आएगी। सामान्य प्यास लगा है तो पानी के लिए इतनी तड़पन नहीं होती, लेकिन कंठ सूखता है फिर तो शरीर में एक एक रोम से पानी पानी का पुकार आएगा, पानी चाहिए पानी चाहिए। वो पानी के लिए प्रयास किए बिना कैसे रह सकता है? कुछ रह सकता है? सामान्य प्यास लगे तो चलो कहीं नहीं, आधा घंटा घंटा नहीं मिले तो चलेगा, तो प्रयास नहीं करेगा। लेकिन बहुत प्यास लगी तो प्रयास के बिना कोई रह सकता है क्या? बस वो बात ऐसी है। परिणति हुए बिना स्वरूप का उपयोग कहां से होएगा? नहीं होगा। ऐसी मुमुक्षु की भूमिका में परिणति पलटे बिना आगे जो स्वरूप का उपयोग से हमको मोक्ष मार्ग प्राप्ति होगी ना, शुद्ध उपयोग से, उपयोग में कहां से आ सकेगा? कि कोई नहीं आ सकता। परिणति हुए बिना जीव स्वरूप में उपयोग लगाना चाहता है कि चलो ध्यान में बैठ जाए, तो भी ऐसा बन सकता नहीं है, उपयोग लगेगा ही नहीं। उपयोग लगाने की हमारी इच्छा हुई, विकल्प हुआ, तो क्या ऐसे उपयोग हो जाता है क्या? नहीं बनता। उसका कारण परिणति बननी चाहिए। जैसे स्वरूप का भाव भाषण हुआ तो स्वरूप की इतनी महिमा आएगी कि परिणति बन जाएगी, फिर उपयोग होगा। इसके पहले उपयोग नहीं होता, शुद्ध उपयोग नहीं होता। ऐसे हर स्टेज में इसकी परिणति बन जाती है। जैसे गुरु के प्रति बहुमान होता है, भक्ति होती है, इसकी भी परिणति बन जाती है। एक एक स्टेज में इसकी परिणति बनती है, तब ये जो स्टेज है वो अपने स्थान में ठीक हुआ है, वरना ठीक नहीं हुआ है। जैसे किसी को वेदना हुई, परिभ्रमण की चिंता हुई, जुड़ना हुई, तो उसकी भी एक परिणति बनेगी। वो एक योग्यता में आ जाएगा। ऐसे योग्यता बदलती है, परिणति अनुसार बदलती है। अपन जो सुबह स्वाध्याय करते हैं बहन श्री के सानुभूति दर्शन में, उसमें परिणति की बात बहुत लिया है जगह जगह पे, तो परिणति हो जानी चाहिए। उदासीनता की भी परिणति हो जानी चाहिए, भक्ति की भी परिणति हो जानी चाहिए, आत्मकल्याण की भावना की भी परिणति हो जानी चाहिए, तभी आगे का काम होता है। तो परिणति तो होवे नहीं, उल्टी परिणति, गई नहीं जाती नहीं। इसलिए काम नहीं बनता और समस्या खड़ी हो जाती है। पुनः आत्मा की भावना नहीं है, आत्मकल्याण की भावना नहीं है, उसे संसार की और राग की भावना है ही, वो तो कोई करने नहीं पड़ती है, वो तो अनादि से चालू है। संसार का राग तो बहुत रगड़ा ही है, इसका पुरुषार्थ, वो संसार की भावना वाले का पुरुषार्थ और परिणति दोनों बाह्य दिशा में लगी हुई रहती है। पुरुषार्थ भी लगा हुआ रहता है, परिणति भी लगी हुई रहती है। वो काम तो चालू ही है, उल्टा काम तो चालू ही है। वो अंतर्मुख कहाँ से होगा? उसको अंतर्मुख होने का कोई अवसर है ही नहीं। परिणति हुए बिना, भावना से जो परिणति होती है, वो परिणति हुए बिना, उतना रिजल्ट तो आना ही चाहिए परिणति का, जो भी स्टेज में है उस स्टेज का। अंतर्मुख होने का विकल्प यह कोई पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है, वो एक ऊपर ऊपर का विकल्प है, ऊपर ऊपर की इच्छा है, ऊपर ऊपर की बात है ये बिल्कुल। उसमें कोई पुरुषार्थ का अंश नहीं, पुरुषार्थ तो उल्टा चालू है। पुरुषार्थ उल्टा चलता है, परिणति उल्टी चलती है, और हमारा विकल्प चलता है कि हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो गए तो अच्छा, हम चाहते हैं। बात कहां से बनने वाली है? ये कभी बनने वाली नहीं है। इसलिए भावना से परिणति बननी चाहिए, या ऐसा आशय है कि भावना इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि परिणति बन जानी चाहिए। ये हुआ 144। इसके पीछे है 183 नंबर का। एमा फेर पड़ी जाए, वो अंदर में, अंतर में वो परिणति का छेद हो जाता है, परिणति भिदाए। 569 में क्या लिया है? कोई तथारूप योग को प्राप्त हो करके यदि एक क्षण भी अंतर भेद जागृति, मैंने अंतर भेद होकर के, अंतर परिणति का भेद होकर के, छेद होकर के, वो हर्ट होने चाहिए। अगर आत्म जागृति आई कि अब तो आत्म कल्याण के सिवा जीवन में कुछ करना है ही नहीं, उनको मोक्ष विशेष दूर नहीं है, तो कितना मोक्ष के मोक्ष से वो समीप आ गया जी है। ऐसे अंतर परिणति को भेद करके आत्म जागृति में आत्मकल्याण के विषय में जागृत हो गया जीव, उसको मालूम पड़ने लगा कि ये मेरे अहितकारक परिणाम है, ये मेरे हितकारक परिणाम है। इसके पहले वो बात समझ में नहीं आती कि मेरा हित में कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो इस स्टेज में आने वाले को ज्ञानियों ने इतना रिस्पांस दिया कह रहे अभी तो इसका मोक्ष समीप हो गया। इसका मोक्ष खास दूर, विशेष दूर नहीं है, मतलब खास दूर नहीं है। कितने आशास्पद बात है और कितनी प्रेरणास्पद बात है। वो काम कोई बड़ा मोक्ष मार्ग में तो भी नहीं पहुंचा है, इसलिए काम तो सामान्य हुआ है, फिर भी उसमें कितना लाभ होने वाला है वो दिखा देते हैं कि जिससे उसका उत्साह बढ़ जाए, वो वीर्योल्लास में आ जाएगा, उल्लास में आ जाएगा, उसका पुरुषार्थ उछलने लगेगा। ये बात है, इसलिए ज्ञानी कहते कि थोड़ा काम कर लो ना भाई, कोई मौका मिला है तो थोड़ा काम कर लो, अच्छा मौका मिला है कर लो, जल्दी से थोड़ा काम कर लो। जैसे अनुकूलता का विकल्प आया, तो ये परिणति में से आया है, उसको लाइटली नहीं लेना है। चलो अपने तो अनुकूलता है, कोई खास उपाधि नहीं है, फिलहाल कोई उपाधि नहीं है, सब व्यवस्था बैठ गई है, सब चीज आराम से प्राप्त है। जो अपने को कोई लग्जरी तो चाहिए नहीं, सामान्य मुमुक्षु के जीवन में तो जो सामान्य जरूरत है वो इजीली अवेलेबल है। चलो अपने को अभी कोई तकलीफ नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, तो परिणति पड़ी है, इसमें से वो बात आती है। वो बात आई तो हमारी परिणति और दृढ़ होगी। अनुकूलता में रस लेने वाले हैं, ऐसे हम कहां हमको कितना नुकसान करते हैं वो मालूम नहीं पड़ता, परिणति को और तगड़ी बनाते हैं, उल्टी परिणति को और तगड़ी बना देते हैं। बात तो किसी के होती कि देखो उसको ये तकलीफ है, उसको वो तकलीफ है, पर हमको नहीं है। क्या आया, इसको तकलीफ है लेकिन हमको नहीं है, लेकिन हमने क्या कर लिया मालूम नहीं है, हमको कितना नुकसान किया है। ऐसे सामान्य भाव लगता है लेकिन नुकसान कितना होता है वो मालूम नहीं पड़ता। तो परिणति बनती जाएगी और तगड़ी होती जाएगी और तगड़ी होती जाएगी। नहीं, हमारी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए, हर हालत में हमको हमारा काम करना है, चाहे बाहर में जिसको प्रतिकूलता कहे वो हो या जिसको अनुकूलता कहे वो हो, हमको न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, हमको तो एक ही काम करना है। ऐसा है कि तीव्र भावना वाले को अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से उदासीनता आती है, तो उदासीनता है वो अपेक्षा वृत्ति से विरुद्ध है, पर उदासीनता नहीं है तो अपेक्षा वृत्ति खड़ी है, और वो बात अपेक्षा वृत्ति की समझ में नहीं आती है। उदासीनता का अभाव है तो कहाँ उदासीनता का अभाव है, अपेक्षा वृत्ति तो वो तो खास नहीं दिखती, अरे भाई पूरी है तो परिणति रूप में है और पूरी पूरी है, ऐसी बात है। और वो कब पता चलेगा कि प्रतिकूलता आएगी तब रिएक्शन आएगा इसका, रिएक्शन आए बिना नहीं रहेगा। नहीं हो सकता, हो गए हो ही नहीं सकता। हाँ मुक्ति कहाँ से हुआ? उसमें तो भगवान की भक्ति में भी दीनता नहीं होनी चाहिए, ऐसा बात लिया है। एक स्टेज में तो दीनता आनी चाहिए और एक स्टेज में आगे बढ़ करके दीनता नहीं आनी चाहिए, वो बात है। हाँ 183 में वही बात पर भावना का स्वरूप लिया है कि निज परम स्वरूप की प्राप्ति के अभाव में वेदना सहित की भावना हो गए तो मार्ग मिले ही, इस सूत्र सिद्धांत जैसी बात लिखी है, संक्षेप में लिखा है ना, तो इस सूत्र सिद्धांत जैसी बात लिखी है, लख हुई तो लख सूत्र जीवी बात है कि निज परम स्वरूप की प्राप्ति का अभाव है तो उसके अभाव में अभाव के कारण से कोई वेदना है कि नहीं है तुमको? वेदना के अनेक कारण होते हैं, उसमें परिभ्रमण चालू है इसकी भी वेदना मिटाने, और हमारे पूर्व के जो अपराध हैं इनके पश्चाताप की वेदना, दो सत्पुरुष का वियोग होता है इसकी वेदना, तीन और हमारे परम स्वरूप की प्राप्ति का अभाव है इसकी वेदना, और वर्तमान में हमको अशांति है, शांति नहीं हो रही है, आत्म शांति नहीं है, इसकी बेचैनी, इसकी वेदना, अनेक प्रकार से वेदना तो होनी चाहिए। क्यों होता है वो तो पूछना चाहिए अपने आत्मा को कि जो चीज अनित्य है असार है उसके पर मेरी प्रीति क्यों? जिसके कारण से कोई सुख नहीं मिलेगा और जो कायम साथ में रहने वाले चीज नहीं है उस पर मेरी प्रीति है तो मैं उसको कायम रखना चाहूंगा, उसमें से सुख लेना चाहूंगा, ये मेरे को क्यों? ये प्रश्न उठना चाहिए। तो वो परिणाम में रस नहीं आएगा, रस टूटेगा और रस तोड़ने के लिए है। यहां तो कहते हैं कि स्वरूप प्राप्ति के अभाव, वो अभाव के कारण से प्राप्ति की जो भावना है वो अभाव की वेदना के साथ आनी चाहिए। हमको भावना है, स्वरूप प्राप्त होने की भावना है, ऐसा नहीं चले इसकी वेदना है कि नहीं है, वो बात है। वेदना होने से मार्ग की प्राप्ति होती ही है, वो गारंटेड बात है। आतड़ी माथी उठ भी लीजिए, हमको हमारा स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शांति भरी है, फिर भी हमको अशांति हो रही है। बाह्य कारणों से भले अशांति हो रही हो, समाधान तो होता ही नहीं। देखो संसार में जीव को अपनी इच्छा के अनुसार तो सब बनता नहीं, और इच्छा अनुसार बनता नहीं तो आकुलता और अशांति हुए बिना रहती नहीं, ये तो सबों का अनुभव है। अब चाहिए तो शांति, एक परिस्थिति ठीक होगी तो दूसरे की अशांति, दूसरी ठीक होगी तो हमारी इच्छा तो हजारें होती है, एक दो तो होती नहीं है, एक दो तो होती नहीं। और सबकी सब पूरी होने का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। एक भी संसार में ऐसा मनुष्य दिखा दो कि आज उसको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसके पास है, अरे मनुष्य जितना संपन्न होता है, संपत्ति वाला होता है, उतना ही इसकी जरूरियात का लिस्ट लंबा होता है, है क्या नहीं है? देख लीजिए राजा महाराजाओं के वहां नौकर क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी जरूरियात इतनी ज्यादा है, इसके लिए वो चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। जिसको 10-20-25-50 नौकर होता है ना, उसको रात को नींद नहीं आती, उसको रात में नींद नहीं आएगी। क्यों? लोग ऐसा देखते हैं कि ये इतने नौकर का सेठ है, मालिक है, वास्तव में सब नौकर इसकी छाती पे बैठे हैं, कहां से नींद आएगी उसको? नहीं आएगी। गुरुदेव भी यही कहते थे, लंबी चौड़ी लग्जरियस कार आती है ना, तो पैसे वाला आदमी 10-20-25-50 लाख की गाड़ी लेता है, रोल्स रॉय, तो लोग ऐसा देखते हैं, वाह कितनी लंबी चौड़ी गाड़ी में बैठ कर जाता है, वो गाड़ी में नहीं बैठा है, इसकी छाती पे गाड़ी बैठी है। क्योंकि उसको मेंटेन करने की उपाधि इसकी परिणति में है, उपयोग भले नहीं हो, उपयोग तो 10-20-50 काम में उसमें लगा रहता है, लेकिन परिणति सब चीज की उपाधि की बैठ जाती है, और वो उसको शांति लेने देती नहीं है। और खरोंचाए बिना रहेगी नहीं, किसी की गाड़ी में खरोंच होती नहीं, ऐसा बनता नहीं। हाँ। ये परिस्थिति है। अब इधर तो कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप यूरोप के देश हैं, सब धनाढ्य देश बोला जाता है, अमेरिका है, वहाँ लोग बेचैन क्यों हैं, पागलखाने में ज्यादा से ज्यादा केस क्यों है, हार्ट डिजीज का केस वहाँ ज्यादा क्यों है, डायबिटीज का क्यों ज्यादा है, हाइपरटेंशन का क्यों ज्यादा है। तो अखबार में तो खुले आंकड़े स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा ये चीज है, कैंसर भी वहाँ ज्यादा है। जैसे यूरोप के 15-20 कंट्रीज हैं, उसमें स्विट्जरलैंड है वो सबसे बड़ा धनाढ्य देश है। तो आपने एक मुमुक्षु रहते थे, तो गुरुदेव के जब तक तकलीफ हुआ तो थोड़ा उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। उसने चिट्ठी में बताया कि यहाँ स्विट्जरलैंड में 100 मनुष्य में 20 को कैंसर होता है। कितना? 20% कैंसर केस एवरेज है यहाँ चलता है। तो सबको भय रहता है, अरे कुछ हो जाएगा, अरे कल कुछ हो जाएगा, अरे कल कुछ हो जाएगा। कहाँ से चैन मिलेगा उनको? संपत्ति पड़ी रहेगी और बेचैनी चालू रहेगी। इसलिए विचारमान जो जीव है वो इस लाइन में आते हैं। कौन आते हैं? जो विचारवान हो, जिसको सुखी होना है, वो इस लाइन में आते हैं। कहते कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए कि हर हालत में हम सुखी रहे, कोई हालत में हमारा हमको दुख नहीं होना। ऐसा कोई उपाय है क्या? नहीं है, है तो हमको इसकी खोज करना है और उस उपाय को हमको ग्रहण करना है, प्राप्त करना है। वो बुद्धिमान है, वही विचारमान है। बाकी तो सब खा पी के मर जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। सुबह शाम खाते हैं, रात को सो जाते हैं और आयुष भोग करके मर करके दुर्गति में चले जाते हैं। टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। बात बात में जवानी आ जाती है और बात बात में बुढ़ापन, देर नहीं लगती है। तो इसके लिए पहले वेदना सहित की भावना होनी चाहिए। ये कंडीशन है, भावना में की वो कंडीशन है। ये भावना का सही स्वरूप है, बाकी भावना भावना नहीं है, विकल्प है। तो जब भावना ही नहीं है, काम कहां से होने वाला है? और विकल्प होने से हम मान लेते हैं कि हमारी भावना है, वो भावना नहीं है। हाँ, मिसकॉन्सेप्ट हुआ। हमारी तो भावना है, क्या करें, हमारी भावना है, काम नहीं हो रहा है। भावना तो बहुत है लेकिन काम नहीं हो रहा है कि नहीं? यह तो गारंटेड बात है कि वेदना सहित की भावना हुए उसको तो मार्ग मिले ही मिले, नहीं मिले ऐसा वेदना हुई तो भावना हुई, वेदना नहीं हुई तो भावना नहीं है। ऐसे बात वरना विकल्प कोरा विकल्प है। जैसे हमारी कोई तीव्र इच्छा होती है और ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कितने छटपटाते हैं, कितने छटपटाते हैं। तो वो तो सामान्य बात है, कोई हमारी इच्छा होती है वो तो कोई सामान्य बात है, ये तो पूरा संसार का सभी प्रकार का दुख का नाश करने की बात है और हमेशा के लिए परम सुख होने की बात है। इतनी बड़ी बात तो कोई है ही नहीं संसार में। जो कुछ बात इच्छा होती है वो तो टेम्पररी कोई संयोग की बात होती है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए तो कोई चीज बनने वाली है ही नहीं। कोई अनादि अनंत चले, हमारा शरीर भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, दूसरी बात तो कहाँ रहने वाली है। शरीर भी छूटने वाला है, निश्चित रूप से छूटने वाला है, चाहे हम लाख करें और चाहे लाख हम नहीं चाहे तो भी वो परिस्थिति तो होने वाली है। तो इसलिए जो विचारमान जीव है वो परमानेंट सॉल्यूशन को खोजता है, क्या टेम्पररी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमेशा के लिए समाधान चाहिए। इसके लिए भले देर सवेर हो लेकिन सही रास्ता पे जाना है और सही काम करना है। परफेक्शन और 85 लगभग ऐसे बोलो समझ आएगा। एक विषय ऊपर जो ये सुनो आ गए थे ऐसे